ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरन्नुमीरिदे मत्तु यार दिव्यध्वनियुलोकहितव माडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की मंगल पाठ मंगल उत्तम और शरण किसे कहते हैं और वे कितने हैं। जिनको नमस्कार करने से और पूजा आदि करने से संसारी जीव अपनी आत्मा को पाप कर्म के बंधनों से और पाप कर्म की क्रियाओं से मुक्त कर सकता हो उसे मंगल कहते हैं तथा जो इस संसार में मंगल होते हैं उन्हीं को उत्तम कहा जाता है। उत्तम का अर्थ है श्रेष्ठ तथा जो इस संसार में मंगल भी हैं एवं उत्तम भी वे ही संसारी जीवों को स्वयं अपने आत्मा को मंगल एवं उत्तम मानने हेतु शरण के योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे इस संसार में अरहंत सिद्ध साधु इस पद के अंदर तीन परमिष्टि आएंगे आचार्य उपाध्याय और साधु। केवली प्रणीत धर्म मंगल कहा गया है और वे ही उत्तम हैं और वे ही शरण के योग्य हैं। मंगल शब्द वैसे प्रसिद्ध शब्द है जिस शब्द का उपयोग हम सांसारिक क्षेत्रों में भी करते हैं और धार्मिक क्षेत्रों में भी इसका उपयोग होता है। मंगल विवाह, मंगल भवन इत्यादि, ये शब्द संसार में भी व्यवहार में भी इनका उपयोग हम करते हैं। मंगल का अर्थ देखना है, धार्मिक क्षेत्र में मंगल किसे कहते हैं, यहाँ ये परिभाषा बता दी है, जिनको नमस्कार करने से और पूजा आदि करने से संसारी जीव अपनी आत्मा को पाप कर्म के बंधनों से मुक्त कर सके अथवा पाप कर्मों की क्रियाओं से वे परे हो सके, ऐसी शिक्षा प्रेरणा और फल जिसको प्राप्त होता है उसी उसको ही मंगल कहते हैं, जिसके द्वारा या जिससे प्राप्त हो उसको मंगल कहते हैं। चत्तारी मंगल, अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु परमेष्टि मंगल और केवली प्रणीत धर्म मंगल। अरहंत मंगल कहने से ऐसे कोई एक विशिष्ट आत्मा को ही मंगल कहना हो जाता है। वो कौन सी आत्मा, किसको हम मंगल कहें, तो जिसके पास तीन दोष न हो। कितने दोष? तीन दोष। जिस आत्मा के भीतर तीन दोष न हो वे प्रथम मंगल, अरहंत मंगल। और जिस आत्मा के पास चार दोष नहीं हैं वे द्वितीय मंगल, सिद्ध परमेष्टि मंगल। और जिस आत्मा के पास दो दोष न हो वह साधु परमेष्टि हैं, साधु परमेष्टि तृतीय मंगल। और अरहंत भगवान की जो वाणी है वह वाणी अहिंसा धर्म का प्रतिपादन करती है, इसलिए अरहंत परमेष्टि की वाणी मंगल है। उस वाणी में अहिंसा धर्म की व्याख्या हुई है, अहिंसा धर्म का प्रतिपादन हुआ है, इसलिए मंगल कहा जाएगा। पेज नंबर 6 पर सबसे नीचे चौकट में बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित लिख करके दिया है, मंगल किस कारण से जीवों को कहना चाहिए इससे हमको समझ में आता है। छोटे छोटे से वाक्य याद रखने के लिए अच्छे हैं। यहाँ ये बताया है कि कौन किस दोष का विजयी होता है, चार आत्माएं यहाँ हैं। पहले नंबर में श्रावक हैं, दूसरे नंबर में साधु हैं और तीसरे नंबर में अरिहंत भगवान हैं और चौथे नंबर में सिद्ध भगवान। यहाँ पर साधु को भी ले लिया गया है, पर मंगल का व्याख्यान करने हेतु साधु ठीक हैं, अरिहंत ठीक हैं और सिद्ध भगवान ठीक हैं। मंगल की कोटि में श्रावक नहीं आते। क्या आते हैं? चत्तारी मंगलम में श्रावक हैं क्या? नहीं। अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल और केवली प्रणीत धर्म मंगल। तो देखो, मंगलपना आने के लिए कितने दोषों का विजयी होना, कितने दोषों का अभाव होना आत्मा के भीतर, ये यहाँ बताया गया है। दोष चार होते हैं। इन दोषों, चारों दोषों का नाम नीचे दिया है सिद्ध परमिष्टि के परिभाषा में। पहला दोष है मिथ्यात्व, दूसरा दोष है असंयम, तीसरा है आठ कर्म और चौथा दोष है देह। सिद्ध भगवान मिथ्यात्व दोष से दूर होते हैं, असंयम उनके पास नहीं होता, इसलिए असंयम दोष से भी वे दूर हैं। आठों कर्म नहीं हैं, कर्म दोष भी नहीं हैं। संसार में देह धारण करना भी दोष है, शरीर धारण करना, जन्म लेना, ये भी दोष है। आठ कर्मों को नष्ट करेंगे तो चार प्रकार के दोषों में से जो देह नाम का दोष है ये भी नहीं रहेगा। देह धारण करना भी दोष है, ये दोष सिद्ध भगवंतों को नहीं होता, अरिहंत भगवंतों को है, क्योंकि अभी वे शेष आघाती कर्मों को नाश किए नहीं होते हैं, इसलिए वो दोष है। आघाती कर्म चार हैं तो शरीर भी रहेगा और शरीर रहेगा तो दो दोष रहेंगे, कर्म दोष और देह दोष। अरिहंत भगवान कर्म दोष से युक्त हैं इसलिए देह है। सिद्ध भगवान कर्म दोष से भी मुक्त हैं इसलिए देह नहीं है। याद रखने के लिए बहुत अच्छी चीज है, चार दोष हैं, मिथ्यात्व दोष, असंयम दोष, आठ कर्मों का दोष और देह दोष। इसमें से श्रावक किस दोष से, कितने दोष से मुक्त रहते हैं, हो सकते हैं, कितने दोषों से मुक्त हो सकते हैं? एक दोष, असंयम दोष से क्या श्रावक मुक्त हो सकेंगे? ऐसा यदि हो जाए तो वो साधु कहलाएंगे। जब तक श्रावक अवस्था है एक ही दोष त्यागा जा सकता है। कौन सा दोष? मिथ्यात्व। असंयम दोष से कैसे छूटोगे? क्योंकि असंयम दोष परिग्रह के आश्रय से रहता है। जहाँ परिग्रह है वहाँ नियम से असंयम होता है। बहिरंग 10 परिग्रह होने से ही अंतरंग 14 परिग्रह होते हैं। 14 परिग्रह में सबसे पहले नंबर में कौन सा है? सबसे पहले नंबर में ये नहीं, 14 में, 14 अंतरंग परिग्रह में सबसे पहला वाला कौन सा है? मिथ्या तो है ना, हाँ। फिर 4 कषाय हैं, फिर 9 कषाय हैं। इस प्रकार 1, 4 और 9 14 हो गए। अंतरंग कितने परिग्रहों का त्यागी हो सकता है श्रावक? एक ही। कोई कोई कहते हैं कि मिथ्या तो श्रावक क्यों त्यागी, वो तो संसारी है, उनके काम में आता है वो। मिथ्या तो काम में आता है, वो भी कोई धार्मिक चीज है क्या जो आत्म कल्याण में सहयोग कर सके? ऐसी कोई चीज है क्या मिथ्यात्व? मिथ्यात्व तो दोष है जिसके उदय में जीव को अज्ञानी माना जाता है, अंधश्रद्धालु। असत्य को ही सत्य की बुद्धि जिस जीव को हो जाए उस जीव को मिथ्यात्व कर्म का उदय रहता है। असत्य में सत्य बुद्धि, यथार्थ में अयथार्थ बुद्धि। इस प्रकार बुद्धि पर निमित्त के आश्रय से होती है और अंतरंग निमित्त मिथ्यात्व कर्म का उदय होता है और बहिरंग निमित्त फिर कोई भी हो सकता है। संसारी जीव संसार जीवन जीने के लिए मिथ्यात्व का आश्रय अनिवार्य यदि समझता है तो ये उसकी धारणा ठीक है या गलत? गलत है। श्रावक अवस्था में तो एक ही दोष त्यागा जा सकता है। आप साधु की तरह संयमी नहीं बन सकते, पर सम्यक्त्वी तो बन सकते हैं ना। तो जो बन सकते हैं वही बनना चाहिए। अगर श्रावक अवस्था में सम्यक्त्व को अनावश्यक समझेंगे तो क्या क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं? धर्म क्षेत्र में, आत्म कल्याण के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं इसका विचार करो। क्या सम्यक्त्व के बिना तीर्थंकर कर्म का बंद हो सकेगा? जिस कर्म के बंद करने पर एक श्रावक आगामी भवों में जाकर के तीर्थंकर बनता है, ज्यादा से ज्यादा तीसरे भव में ही तीर्थंकर बनता है। तीसरा भव, एक ए भव और दूसरा नरक का कहलाएगा या तो देवगति का कहलाएगा। वहां से आकर के तीर्थंकर बनेगा। तो तीर्थंकर बनने के लिए क्या सम्यक दर्शन अनावश्यक है? आवश्यक है ना, अति आवश्यक। सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना कोई भी श्रावक तीर्थंकर पुण्य कर्म का बंध कर ही नहीं सकता। और सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना प्रथम गुणस्थान का त्याग भी नहीं हो सकता। प्रथम गुणस्थान में चारों दोष होते हैं, ये चार: मिथ्यात्व, असह्यम, आठो कर्म और देह। अगर ये चार दोष से हम मुक्त हो जाएं तो सिद्ध भगवान बन जाएं। दोष चार ही हैं, उसमें से परिग्रह का रंच मात्र भी त्याग नहीं है, चारित्र का अंश मात्र भी जीवन में नहीं है, तब भी श्रावक गुणवान बन गया है। चार गुणों को नहीं, चार दोषों को त्याग करने से चार गुण प्रकट होते हैं। मिथ्यात्व को त्यागने से कौन सा, हाँ ठीक है ना, मिथ्यात्व को त्यागने से कौन सा गुण प्रकट होगा? सम्यक्तु। असंयम दोष को त्यागने से संयम गुण प्रकट होगा। और आठों कर्मों को नाश करने से कितने गुण? हाँ, एक एक कर्म को नाश करने से एक एक गुण प्रकट होगा। कौन से बता सकेंगे? आठ कर्म हैं, कर्मों के नाम तो आपको मालूम है। ज्ञानावरणी कर्म का नाश करने से अनंत ज्ञान की उपलब्धि होती है। दर्शनावरणी कर्म को नाश करने से अनंत दर्शन गुण यानी देखने की शक्ति अनंत रहेगी, असीम सीमातीत शक्ति आत्मा में देखने की रहेगी। और ज्ञानावरणी कर्म को नाश करने से अनंत ज्ञान, सीमातीत ज्ञान, अभी तो कुछ भी नहीं है, सामने जितने दिखाई देता है उतने प्रमाण का ही ज्ञान भी होता है। जानने की क्षमता आत्मा के पास वर्तमान में तो बहुत कम है, पर यदि ज्ञानावरणी कर्म को नाश करेंगे और अरहंत पद पर पहुंचेंगे तो हमारे पास कितना ज्ञान रहेगा? अनंत। यहाँ बैठे बैठे नीचे हम सारे नरकों को, सातों नरकों को देखेंगे, अधोलोक, ऊपर ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक, असंख्यात द्वीप और समुद्र प्रमाण है। ये सभी आत्मा के भीतर झलकेगा, प्रतिबिंबित होगा। जिस प्रकार दीवाल पर लगे दर्पण में सामने वाले पदार्थ, दूर दूर तक के पदार्थ एक दर्पण में, एक दर्पण रखो और उसमें देखो, उसके सामने वाले पदार्थ और आपके पीछे वाले, उधर मुख करके खड़े होंगे तो आपकी अपेक्षा से पीछे कहा जाएगा और दर्पण की अपेक्षा से सामने वाले पदार्थ कितने दूर दूर तक को दिखाई देंगे, उसकी कोई सीमा है? अनंत। दर्पण को जमीन पर रखो ऊपर मुख करके तो आकाश भी दिखाई देता है, तो आकाश कितनी दूर है? अनंत। एक छोटे से दर्पण में अनंत आकाश प्रतिबिंबित हो सकता है। वैसे देह बराबर की इस आत्मा में, आत्मरूपी दर्पण में जानने की और देखने की क्षमता अनंत है, किंतु इस अनंत क्षमता को, अनंत शक्ति को कर्मों ने नाश करके रखा है। और यदि प्रकट भी है ये शक्ति, व्यक्त भी है, तो बहुत सीमित व्यक्त है। आप नीचे बैठे हैं और हम ऊपर बैठे हैं, बहुत पास पास में बैठे हैं, इसलिए दिखाई दे रहे हैं। अगर एक किलोमीटर दूर बिठाया जाए आपको, एक ही किलोमीटर, केवल एक दूसरे को दिखेंगे? नहीं दिखते। यानी हमारी आंखों में देखने और जानने की क्षमता कितना अल्प है। देखो, एक किलोमीटर के पश्चात व्यक्ति बैठा है, फिर भी नहीं दिख रहा है। दो किलोमीटर बिठाएंगे तो और भी नहीं दिखेगा, पता ही नहीं रहेगा कि व्यक्ति है या नहीं। विमान आकाश में उड़ता है, वैसे देखने में कोई परेशानी नहीं आती। एक किलोमीटर, दो किलोमीटर ऊंचाई पर दिखता है वो। ऐसे ही ऊपर, ज़्यादा ही ऊपर चला गया तो इतना बड़ा विमान, जितना ये मंदिर है इतना बड़ा विमान होता है, होता कि नहीं होता? इससे बड़ा होता है, 400, 500, 800 सीटर वाला भी विमान है, 800 लोगों को लेकर के ऊपर उड़ता है। उड़ता उड़ता वह यदि 5-6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आगे चला गया, तो धरती पर रहने वाला मनुष्य क्या उस विमान को देख सकेगा? नहीं देख सकता। परंतु आकाश में वो होता है क्या? नहीं। क्या दूर जाकर के जादू हो जाता है, गायब हो जाता है, ऐसा कहें? आकाश में ही रहता है, परंतु इन दो आंखों में देखने की क्षमता जो है वह क्षमता समाप्त होती है। बस इतनी ही क्षमता है हमारी, इसको क्षायोपशमिक ज्ञान कहते हैं। हमारा ज्ञान कौन सा? क्षायोपशमिक। और भगवान का ज्ञान कौन सा? क्षायिक ज्ञान, अनंत ज्ञान, असीम ज्ञान। भगवान से यदि पूछा जाए, हे भगवान, मुझे तो विमान नहीं दिख रहा है, कितने किलोमीटर की दूरी पर है, ये हम नहीं बता सकते। भगवान बता देते हैं, ठीक 15 किलोमीटर की दूरी पर विमान जा रहा है। भगवान, आपको दिख रहा है? मुझे तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। तो बिल्कुल स्पष्ट यानी कैसे दिख रहा है? हाथ में रखे लड्डू के समान, प्रत्यक्ष हाथ में लाडू रखा है, निर्वाण लाडू, मोक्ष जाने के लिए रखा है ना। लाडू अर्पण करके हम मोक्ष जाना चाहते हैं, लाडू अर्पण करके हम केवली भगवान, अरहंत भगवान बनना चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते? चाहते। भगवान को लाडू देने से आपको केवल ज्ञान हो जाए, ये कैसे संभव? लाडू तो एक प्रतीक मात्र है भगवान बनने की, केवली, केवल ज्ञानी बनने की आपकी इच्छा है, आशा है, आपका इरादा है, आपका ध्येय है, आपका लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम एकमात्र प्रतीक को चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं समझना कि भगवान को एक लाडू दिया है तो हमको मोक्ष देंगे, ऐसा कोई आदान प्रदान थोड़ी हो सकता है। हमने लाडू दिया और उन्होंने मोक्ष दिया, ऐसा होता तो पहले श्रावक सब मोक्ष जाते और मुनि महाराज यहीं बैठते, क्योंकि उनके पास लाड़ू नहीं है। मोक्ष कौन जाते हैं? मुनि महाराज मोक्ष जाते हैं कि श्रावक? और लाड़ू किस लिए ले जा रहे हैं मंदिर? मोक्ष पाने, निर्वाण पद प्राप्त ही लाडुम निरूपामिति स्वा। और मुनि महाराज देखो, न लाडू चढ़ाते हैं, न द्रव्य चढ़ाते हैं, कुछ भी नहीं चढ़ाते, तब भी मोक्ष जाते हैं। किस कारण से? संयम दोष नहीं है इस कारण से, असंयम दोष, और संयम गुण को अपनाने के कारण मुनि महाराज को मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञानी से पूछो, हे भगवान, 15 किलोमीटर दूरी पर वह विमान है, हम क्यों नहीं बता सके? आपने बहुत जल्दी बता दिया। हमारे पास भी ज्ञान है और आपके पास भी ज्ञान है, दोनों के ज्ञान में क्या अंतर है भगवान? पूछो भगवान से। भगवान कहते हैं, तुम्हारा ज्ञान छोटा है और हमारा ज्ञान अनंत ज्ञान है। आत्मा का क्षेत्र बहुत सीमित है पर ज्ञान अनंत है, जानने की उसमें क्षमता अनंत है। देह प्रमाण आत्मा, भगवान महावीर की आत्मा देह प्रमाण, 7 हाथ प्रमाण आत्मा है, लेकिन 7 हाथ प्रमाण इतना छोटा, आदिनाथ भगवान से कितना छोटा? बहुत छोटा, 1.5 धनुष प्रमाण, 12 फुट यानी 2 धनुष हो गया। भगवान महावीर लगभग 12 फुट, 12.5-13 फुट के थे। आत्मा भी देह प्रमाण होता है, उतने छोटे से आत्मा भी केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाए तो जानने की क्षमता कितनी रहती है? अनंत। और आत्मा देह प्रमाण ही रहता है हर जगह, हर शरीर में। आदिनाथ भगवान की आत्मा 500 धनुष प्रमाण होता है, तो 500 धनुष प्रमाण इतने बड़े आत्मा में, इतने बड़े देहगत आत्मा में जानने की क्षमता भी अनंत होती है। आत्मा छोटा होने से ज्ञान की शक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदिनाथ 500 धनुष के थे और महावीर भगवान 7 हाथ के थे, 12 फुट के थे। जानने, उनके जानने में और इनके जानने में आत्मा छोटा बड़ा है शरीर की अपेक्षा से। मोक्ष जाने के बाद भी आत्मा वहाँ कितना रहता है? उतना ही रहता है, थोड़ा कम होता है। कितना कम? थोड़ा, मामूली कम। कितना कम तो समझना, जितना अपना स्पर्शनेन्द्रिय है उतना। थोड़ा सा कम, इसके लिए उदाहरण दिया है, जैसा ईंट है, ईंट मराठी में वीट बोलते हैं, वीट बनाते समय बनाने वाला उसमें मिट्टी को भर देता है, गीली मिट्टी को पैक कर देता है सांचे में, और उस सांचे को बाद में निकाल लेता है। ईंट सूख जाती है, सूखने के बाद वह छोटी बन जाती है, ईंट छोटी बन जाती है, और उसके पश्चात यदि उस सांचे को ला करके उस पर रखें तो आसानी से आ सकता है, जा सकता है, चारों तरफ से थोड़ी सी जगह खुली रहती है, तो उतना ही आत्मा भी शरीर से कुछ कम हो जाता है, वीट के समान। अभी तो पूरा है, अभी तो हम इस शरीर रूपी सांचे के भीतर हैं, हमारी आत्मा मिट्टी के समान है। जब तक शरीर में है तब तक शरीर के बराबर है, जिस दिन मोक्ष जाएगा उस दिन वह संकुचित होकर वीट के समान थोड़ा छोटा होगा। मोक्ष जाने के पश्चात आत्मा छोटी हो जाती है, देह में रहते हुए देह के बराबर रहता है, फिर भी कितना भी छोटा क्यों न हो, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। देह कितना छोटा होना चाहिए इसका कोई नियम नहीं है, छोटे से छोटे देह में भी आत्मा मोक्ष जाने के बाद छोटा होता है, और बड़े से बड़े देह में भी आत्मा मोक्ष जाने के बाद थोड़ा छोटा होता है। हमारी ज्ञान शक्ति सीमित है, और केवल भगवान की ज्ञान की शक्ति असीम अनंत है। ज्ञानावरणी कर्म का नाश करेंगे तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी, वो ज्ञान शक्ति संपूर्ण आत्म प्रदेश में होती है। उस आत्मा के भीतर ज्ञानावरणी कर्म के धूलि कण कोई एक भी नहीं बचता, सभी धुल जाता है, ज्ञानावरणी कर्म धुल जाता है, स्वच्छ साफ सुथरा हो जाता है। दर्पण के ऊपर धूलि के कण पड़े हों तो हम अपने मुख को देख नहीं सकते, यदि देखेंगे थोड़ा थोड़ा दिखेगा, बहुत नहीं दिखेगा। ऐसा ही देखो, हमारी आत्मा के ऊपर ज्ञानावरणी कर्म के धूलि कण आच्छादित हैं, और केवली भगवान के आत्मा के ऊपर एक भी ज्ञानावरणी कर्म का धूलि कण मौजूद नहीं है, तो कितना साफ है वो। उसी साफ आत्मा के भीतर रहने वाली ज्ञान शक्ति में सारे तीन लोक के पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, झलकते हैं। आप जब भगवान से किसी बात को पूछते हैं, हे भगवान यहां से सातवां नरक कितनी दूरी पर है, ऐसे पूछते हैं, तो केवली भगवान आंख खोल करके पहले देख लेते हैं, ऐसा दिखा नरक। आंखों का उपयोग करना पड़ता है भगवान को, नहीं, आंखें रहती हैं कि नहीं, अरहंत भगवान के रहती हैं, सिद्ध भगवान के नहीं रहती, क्या अंधे रहते हैं, अशरीरी, यानी शरीर की जो आंखें हैं वो सिद्ध भगवान में नहीं रहते, पर पूर्व शरीर के बराबर आत्मा है, तो जहां पहले आंखें थी उस आत्मा के ऊपर उसी जगह आत्मा का आकार तो है, ये आंखों का आकार तो है आत्मा के ऊपर, जिस जगह आंखें पहली थी उस जगह ऐसा गड्ढा भी है, जिस जगह कान था उस जगह कान भी है, कान भी थोड़ा सा छोटा हुआ है, लेकिन है तो आत्मा के प्रदेश वही है। जहां शरीर था शरीर है, जहां नाखून था ये नखुन भाग, वहाँ आत्म प्रदेश अभी भी नहीं है, तो क्या बाद में रह सकते हैं मोक्ष होने के बाद? नहीं, हमारे बालों में आत्मा के प्रदेश नहीं है, है क्या? नहीं है। बालों में आत्मा के प्रदेश नहीं है, इसका क्या प्रमाण? बालों में आत्मा नहीं है, आत्मा के प्रदेश वहां तक फैले हुए नहीं है, इसके लिए कैसे पहचाने? इसको कैसे कैसे पहचाना जाए? हाँ, बाल को काटते हैं तो दर्द नहीं होता, अनुभूति नहीं होती, सुख दुख की अनुभूति नहीं है। नखून भी अपन काटते हैं मशीन से तो उस समय में भी कुछ भी अनुभूति नहीं होती। तो यहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं है। इसी नखून को आप काटते काटते भीतर आ जाओ तो दर्द, जहां से दर्द शुरू होता है वहां से आत्मा के प्रदेश प्रारंभ होते हैं, और ये आत्मा के प्रदेश संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहते हैं, दांतों में आत्मा के प्रदेश वहां रहते हैं, जहां तक दांत के साथ अंदर के जो नशे रहते हैं टच रहते हैं वहां तक। आप कोई खट्टी चीज खा लें, कोई एकदम ठंडी चीज खा लें बर्फ आदि, तो दांत झुम करते हैं, एकदम झुमझुम करने लगते हैं। मतलब वो झुमझुम करना वहाँ से होता है जहाँ तक दांत के साथ नसें जाकर जुड़ी हुई है, वहाँ तक आत्मा के प्रदेश हैं। ऊपरी हिस्से में आत्मा के प्रदेश नहीं है, जो हड्डी की तरह दिखता है, जहाँ पर नसें आदि का संबंध नहीं है, जहाँ तक रक्त आदि पहुँच नहीं पाता, वहाँ तक कोई आत्मा का प्रदेश नहीं। दांत भी नखून की तरह है, नखून को काटते काटते वहां तक जाओगे तो आत्मा के प्रदेश मिलेंगे जहां तक पहुंचना चाहिए। वैसे दांतों का भी समझना है, दांत भी ऐसे ही चलते। अपना विषय क्या था? आठ कर्मों को नाश करने पर आत्मा के आठ गुण प्रकट होते हैं। ज्ञानावरणी कर्म का नाश होने पर अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म का नाश होने पर अनंत दर्शन, वेदनी कर्म का नाश होने पर, पहला घाती कर्म नाश होते हैं ना, उन्हीं को पेज नंबर 40 पर निकालो। देखो सेकंड प्रश्न, आठों कर्मों का नाम भी लिखा है, कर्म का नाश, कर्म नाश, आठ कर्म का नाश, और इस प्रकार जो लिखा है ये घाती कर्म है और आघाती कर्म, पाँच से लेकर आठ तक ये आघाती कर्म हैं और एक से लेकर चार तक ये घाती कर्म हैं, और इन कर्मों के नाश से, चार घाती कर्म के नाश से चार गुण प्रकट होते हैं, सो उनको लिखा है। कौन कौन से? ज्ञानावरणी कर्म नाश हुआ तो अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म का नाश होने से अनंत दर्शन, मोहिनी कर्म का नाश होने से अनंत सुख, और अंतराय कर्म का नाश होने से अनंत बल यानी अपरिमित शक्ति, वेदनी कर्म का नाश होने से अव्याबाधत्व गुण, आयु कर्म का नाश होने से अवगाहनत्व गुण, और नाम कर्म का नाश होने से सूक्ष्मत्व, गोत्र कर्म का नाश होने से अगुर लघुत्व। ये आठ गुण जो हैं ये सिद्ध परमेष्टि के मूल गुण हैं। सिद्धों के कितने मूल गुण? आठ। अरहंतों के? हाँ ठीक है, चार भी कहते हैं तो वैसे कितने हैं? 46। आचार्य परमेष्टि के 36 हैं, उपाध्याय परमेष्टि के 25 हैं और साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण हैं। सब मिलकर के पंच परमेष्टि के सभी मिलके 143 हो जाएंगे। 143। कर्म कितने हैं? आठ के उत्तर भेद कितने हैं? 148। और टोटल गुण हैं 143। आठ कर्म नष्ट होंगे तो सिद्ध भगवान के पास आठ ही गुण रह जाएंगे। देखना, एक अच्छी चीज बताते हैं, श्रावक के मूल गुण कितने हैं ये पूछेंगे तो भी वही उत्तर देना पड़ेगा जो सिद्ध भगवान के लिए दे रहे हैं, है ना? क्या? आठ। श्रावक के आठ मूल गुण हैं। वो कैसे गिनते हैं आठ मूल गुण? पांच अनुव्रत, हाँ ये भी एक प्रकार का है। पांच अनुव्रत के साथ मध्य मांस मधु का त्याग कराया जाता है। प्राचीन उपदेश के अनुसार यानी पहली दूसरी शताब्दी में जो जैन धर्म के ग्रंथ लिखे गए, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्रावक के आठ मूल गुण होते हैं, उनका नामकरण भी मिलता है, पांच अनुव्रत और तीन मकार त्याग, मध्य त्याग, मधु त्याग, मांस त्याग। और पांच अनुव्रत ये हैं, अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परिग्रह परिमाण अनुव्रत। ये स्थूल हैं मोटे मोटे रूप से, ये आठ मूल गुण। श्रावक भी आठ मूल गुण के धारी और सिद्ध भगवान भी। आप लोग सिद्ध परमिष्टि तो नहीं हैं? नहीं, बन सकते, एक बन चुके हैं और एक बन सकते हैं, ये फर्क है हमारे पास। हम बन सकते हैं, उन आठ मूल गुणों को धारण करने के लिए इन आठ मूल गुणों को धारण करना ही पड़ता है। यात्रा भी आठ से होती है और यात्रा की पूर्ति भी आठ से होती है। शुरुआत में भी आठ गुणों को धारण करना पड़ता है और एंड में भी आठ गुणों को धारण करना पड़ता है, पर ये शुरुआत हमारे आठ मूल गुणों के माध्यम से होती है। तो ये पांच जो अनुव्रत हैं इनको धारण करने के उपरांत श्रावक अनुवृत्ति कहलाता है। स्थूल स्थूल मोटी मोटी हिंसा का त्याग करके, जैसे कि चमड़े की वस्तु छोड़ दिया है? और रेशम के वस्त्र आदि को पहनना बंद कर दिया, और हिंसा से बचने के लिए पांच उदुम्बर फलों को त्याग कर दिया। ये आठ मूल गुण में ही आते हैं, पांच उदुम्बर फल, इनका त्याग करके स्थूल अहिंसानुवृत्ति होता है। ऐसे मोटे मोटे रूप से परंतु इससे क्या संयम की सिद्धि होगी? हिंसा में थोड़ी हिंसा कम करे तो थोड़ी अहिंसा की उपलब्धि होती है, पर थोड़ी अहिंसा की उपलब्धि से क्या पूर्ण संयम की उपलब्धि होगी? नहीं होगी। तो पूर्ण संयम की उपलब्धि क्या करने से होगी? महाव्रत धारण करने से। महाव्रत, अनुव्रत नहीं, महाव्रत। अनुव्रत धारण करेंगे तो संयमा संयमी बनेगा जीव, और महाव्रत धारण करेंगे तो संयमी बनेगा। तो संयमा संयम में और संयमी में क्या अंतर है? संयमा संयमी यानी एक देश संयम, जिसके साथ असंयम भी है और संयम भी है। प्योर दूध नहीं है, पानी मिला हुआ दूध है। पानी मिला हुआ दूध और एक प्योर दूध, प्योर दूध की ही कीमत है। पानी मिले हुए दूध की कीमत और पानी नहीं मिली हुई दूध की कीमत, पानी नहीं मिला हुआ दूध की कीमत क्या है? थोड़ा फर्क रहेगा कि नहीं? थोड़ा क्या महाराज, 10-10 रुपए ज्यादा लेते हैं। दूध की कीमत क्या है आज? 50 रुपए लीटर। एक लीटर के लिए 50 रुपए, 2 लीटर लेओगे तो एक अखंड नोट 100 का देना पड़ेगा, तो देना तो पड़ेगा। गाय का दूध, भैंस का दूध, उसमें भी क्वालिटी होती है, उसमें भी कुछ तत्व होते हैं, औषधि तत्व। एक गीर गाय आता है, गीर गाय आती है, हाँ? गुजरात की होती है गीर गाय, उसका दूध भी गाढ़ा होता है, फैट भले ही कम हो लेकिन शक्ति भरपूर, और रोग निवारक शक्ति उस दूध के भीतर ज़्यादा होने से वो दूध काम का है। एक लीटर उसका ले रहे हैं और एक लीटर भैंस का ले रहे हैं, कौन सा महंगा पड़ेगा? गीर गाय का दूध महंगा है, वो 60 रुपये लीटर, 10 रुपये अधिक। ऐसा ही संयम में और देश संयम में अंतर है। पानी मिला हुआ दूध सस्ता है, श्रावक बनना आसान है, प्रतिमाधारी बनना तो आसान है, पर साधु बन जाना आसान नहीं है, महंगा है। साधु बनना महंगा पड़ेगा, श्रावक बनना सस्ता पड़ेगा, इसलिए तो आप श्रावक हैं, बहुसंख्यक हैं। सस्ता है इसलिए बहुसंख्यक है, और साधु बहुत महंगे हैं इसलिए कम है। गिर गाय का दूध है, हाँ। दोष 4 होते हैं, मिथ्यातु दोष, असंयम दोष, कर्म दोष, देह दोष, 4 ही दोष हैं। चारों दोषों को समाप्त करेंगे तो सिद्ध भगवान, और कर्म दोष को आधा नाश करेंगे और आधा बचाएंगे तो अरिहंत भगवान बनेंगे। तो देह दोष नाश नहीं होने वाला, आघाती कर्मों को नष्ट करेंगे तो ही देह दोष नष्ट होगा, पर अरहंत भगवान आघाती कर्मों को कहाँ नाश करते? नहीं करते, नाम कर्म के उदय के कारण। उसका फल यह शरीर है, शरीर तो है ही उनका, अरहंत भगवान का शरीर है कि नहीं है? सिद्ध भगवान का शरीर नहीं है, साधु परमिष्टि का शरीर है। पांच परमिष्टियों में से कितने परमिष्टियों के पास शरीर है? चार परमिष्टि, और एक परमिष्टि के पास शरीर नहीं है। वो सब दोषों से मुक्त है, एक भी दोष उनके पास नहीं मिलेगा। निर्दोष यदि कोई आत्मा है तो सिद्धात्मा ही निर्दोष है, और इसीलिए तीर्थंकर भगवान चाहे वे गृहस्थ अवस्था में हो चाहे मुनि बन जाए, वे कभी चार परमिष्टि को नमस्कार ही नहीं करते। कौन? तीर्थंकर, सिद्ध नहीं, तीर्थंकर चार परमिष्टियों को नमस्कार करते ही नहीं। किस परमिष्टि को नमस्कार करते? सिद्ध परमिष्टि को, केवल सिद्धों को ही नमस्कार करते हैं। ऐसा क्यों? क्या शेष परमिष्टि पूजनी नहीं है, नमस्कार के अयोग्य हैं? उन्हीं ने तो बताया कि पांच परमिष्टि ही वंदना के योग्य हैं। ये किसने बताया? सिद्ध ने बताया कि अरहंत ने बताया? तीर्थंकर भगवंत ने ही बताया अरहंत बनने के बाद, और वे स्वयं साधु अवस्था में और श्रावक अवस्था में चार परमिष्टि को नमस्कार ही नहीं किया, करते नहीं है। कोई भी तीर्थंकर हो, जितने भी आज तक तीर्थंकर हुए इस धरती पर इतिहास में, एक भी तीर्थंकर ने चार परमिष्टि को नमस्कार नहीं किया। महावीर भगवान के छोटी अवस्था में, कुमार अवस्था में, दो चारण रिद्धि मुनि महाराज वहाँ से गुजर रहे थे। निकलते समय वहाँ से उनको दृष्टि पड़ी, तीर्थंकर बालक खड़ा है। नजर पड़ी तो उनके मन की शंकाएं, जो शास्त्र में चिंतन करने में शंकाएं उत्पन्न हुई थी, प्रश्न उत्पन्न हुए थे, बालक को देखते ही उनके प्रश्नों का शंका समाधान तुरंत मिल गया। देखो, तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में भी होते हैं तो ये उनको देखने मात्र से शंका का समाधान हो जाना, ये विशेष बात है कि नहीं? तीर्थंकर बालक को देखा, और तीर्थंकर बालक ने भी मुनि महाराज को, जो चारण रिद्धि थे, दो मुनि महाराज थे गुजर रहे थे, उनको देखा। देख करके कुछ तो करना चाहिए था ना, क्या करना चाहिए था? नमोस्तु तो करना चाहिए था। बालक है, श्रावक है, स्वयं असयम अवस्था में है, असयम दोष तो है, एक दोष नहीं था केवल उस बालक में। कौन सा? मिथ्या तो दोष नहीं था, असयम था, कर्म दोष था, शरीरधारी हैं तो शरीर भी है, तीन दोष थे। कम से कम इन तीनों दोषों के नाश के लिए साधु परमिष्टि को नमस्कार करते? नहीं, किया नहीं। वो देखे चले गए। मुनि नमस्कार कर सकते हैं क्या तीर्थंकर बालक को? हैं? बालक को कर सकते? अगर वही बालक मुनि बन जाए तो चारण रिद्धि भी नमोस्तु महाराज कहेंगे, नमोस्तु महाराज कहेंगे। पर जब तक असयम अवस्था में है तब तक तो नमस्तु नहीं कह सकते। और वही तीर्थंकर बालक आपके सामने आ गए तब क्या कहोगे? कोई देव आए तीर्थंकर बालक के सामने, वो क्या करेंगे? अभिवादन के रूप में कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? हैं? नमस्तु, आपके शब्द तो इतने सस्ते हैं कि किसी भी शब्द को कहीं भी प्रयोग कर लो। ऐसा कैसा, ये शब्द भी बड़े महंगे हैं। जय जिनेन्द्र सबसे सस्ता है, एक रुपए लीटर में लिपि ले लो तो ये दूध जाएगा। जय जिनेन्द्र, तीर्थंकर बालक को आप क्या कहोगे? जय जिनेन्द्र कहना पड़ेगा। बिल्कुल सही है कि नमोस्तु कहोगे। अभी तीर्थंकर बने नहीं, तीर्थंकर बनने की योग्य आत्मा आया है, अभी तो गृहस्थ अवस्था में है। जब इनको केवल ज्ञान होगा मुनि बनेंगे, मुनि बनने के पश्चात भी तीर्थंकर नहीं कहलाते। केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी तब तीर्थंकर कर्म जो बांधा था वो उदय में आएगा। जब तीर्थंकर कर्म का उदय हो जाए तब वो तीर्थंकर घोषित होंगे। कर्म के उदय के बिना घोषित नहीं होंगे। कोई सामान्य श्रावक भी दीक्षा लेकर मुनि बन करके घाती कर्मों को नाश करके अरिहंत पद प्राप्त कर लेता है, पर क्या तीर्थंकर घोषित हो जाता है? हैं? नहीं होता ना। क्यों? तीर्थंकर घोषित वो भी अरहंत हैं, ये भी अरहंत हैं। क्यों? समोशरण भी गंधकोटी लगती है ना, पर समोशरण नहीं है। हाँ, बारह सभाएं होती है। हाँ, सामान्य मनुष्यों की गंधकुटी लगती है, और तीर्थंकर कर्म को बंधे जीव के लिए समोशरण की रचना होती है। फर्क इतना ही है, समोशरण एक बृहद आकार वाला होता है और गंधकुटी एक छोटा सा समोशरण मॉडल होता है। गंधकुटी तो है तीन स्टेप, ये उसके ऊपर अरहंत भगवान विराजमान रहते हैं। सामान्य केवलियों की गंधकुटी मात्र होती है, बारह सभाएं उसमें भी होती हैं, पर अन्य अन्य जो और रचना है, विस्तृत रचना, वो हो या ना हो, हो तो समोशरण कहलाएगा, नहीं हो तो समोशरण नहीं। गंधकुटी की रचना मात्र होती है। तो देखो, बता क्या रहे थे हम, तीर्थंकर भगवान श्रावक अवस्था में, कुमार अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में आपको साक्षात मिले तो क्या बोलोगे? जय जिनेन्द्र। और फिर क्या चावल चढ़ा के बोलोगे, क्या फल चढ़ा कर बोलोगे, कैसा बोलोगे? देव आदि आते हैं स्वर्ग से, तीर्थंकर भगवान की सेवा में तो आते ही हैं। गर्भस्थ बालक की सेवा भी देवों ने की, जन्म के पश्चात भी उनके सामने सामने देव घूमते हैं। देव कुमारों के साथ ये तीर्थंकर कुमार खेलते भी हैं। इसी मंदिर में कहीं हमने चित्र देखा है, पार्श्वनाथ मंदिर में कहीं बने हुए चित्र हैं दीवाल पर। हाँ, शिखर पर देखा है, ध्यान आए, शिखर पर है, यहाँ छत पर आदिनाथ भगवान के कुमार अवस्था के साथ देव कुमार घूमने खेल रहे हैं, ये चित्र बनाया है। देव लोग आ तो रहे हैं, ये वैमानिक देव हैं या भवनवासी देव हैं या ज्योतिषी हैं, कोई भी आ सकते हैं तीर्थंकर के पास। हाँ, हो सकता है यहाँ भी हो, दीवाल पर कहीं तो देखा है हमने, ये ध्यान नहीं आया। ये तीर्थंकर कुमार आमने सामने हो जाए देवों के, देवलोग इनको क्या कहेंगे और तीर्थंकर कुमार इनको क्या कहेंगे। देवलोग तो तीर्थंकर कुमार मिले तो जय जिनेन्द्र जरूर बोलेंगे, क्या नमस्ते बोलेंगे? नहीं। और वो देवलोग जय जिनेन्द्र तो बोलेंगे, क्या चावल बादाम आदि भी चढ़ाएंगे? नहीं चढ़ाते। जब जन्मे तब जन्मोत्सव मनाया, जब गर्भ में आए गर्भोत्सव मनाया, दीक्षा लेंगे दीक्षोत्सव मनाते हैं देवलोग, केवल ज्ञान हो जाए ज्ञानोत्सव मनाते हैं, मोक्ष चले जाए तो निर्वाणोत्सव मनाते हैं। उत्सव मनाते समय पूजा भी करते हैं। गर्भोत्सव में गर्भ कल्याणक पूजा देवों ने की। पूजा की तो क्या गर्भस्थ बालक की पूजा की, उनको अर्घ्य चढ़ाया? जन्म के पश्चात जब उनको जय जिनेन्द्र बोला जाता है तो गर्भस्थ बालक के लिए पूजा कैसे हो सकती है? आठ द्रव्यों को लेकर होगी क्या? नहीं होगी। तो पूजा किसकी की? पूजा तो ही है, आठ द्रव्यों से पूजा उन्होंने की है, पर किसकी की? हाँ, ये ध्यान में हमको रखना चाहिए। जब जन्म होता है या गर्भ में आता है वह आत्मा तीर्थंकर बनने वाला, उसका उत्सव जरूर मनाया जाता है, खुशी हो जाती है। उस खुशी में यही आत्मा असंयम दोष को नाश कर संयम धारण करेगा, उसकी पूजा जरूर करेंगे। संयम अवस्था की पूजा करते, यानी भावी अवस्था है वो, अभी तो गर्भ में आया है, पर दीक्षा लेगा तो असंयम जाएगा और संयम गुण आएगा, तो असंयम गुण की पूजा होती है। आप सुन रहे हैं ना सभी ध्यान से? असंयमी की पूजा नहीं होती और न ही असंयमी जीव को कोई द्रव्य चढ़ा करके नमस्कार किया जाता है। आप लोग ये क्रियाएं करते होंगे मंदिर में, देवादि के लिए जिसको कि अपन केवल जय जिनेन्द्र बोल सकते हैं, उनको द्रव्य भी चढ़ाते होंगे, चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते थे, यानी उस समय पहला दोष था इसलिए थे, चढ़ाते थे। अब वह पहला दोष चला गया तो ज्ञानोदय हो गया, ज्ञान का सूरज उग गया है। सम्यक्तो का सूर्योदय होने पर कोई द्रव्य नहीं चढ़ाएगा, ज्यादा से ज्यादा जय जिनेन्द्र। वस्त्रधारी जीव चाहे मनुष्य हो चाहे देव हो चाहे कोई भी हो, जय जिनेन्द्र बोला जाएगा, एक ही शब्द है, सस्ता, एक रुपये लीटर। नाइन्टी प्रतिशत पानी, 10% दूध। इतना ही बोला जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वह भी ध्यान रखे, साक्षात आए हों तो बोला जाएगा, क्या स्टैच्यू के लिए बोला जाएगा? साक्षात आए तो आप किसी श्रावक के लिए भी जब वो आमने सामने हो जाते हैं वो भी जय जिनेन्द्र बोलता है, आप भी जय जिनेन्द्र बोलते हैं, देव आदि भी समोशरण में आते हैं, यहाँ पृथ्वी पर भी आते हैं, कोई देव आपके सामने आके खड़ा हो गया साक्षात आ गए। तो साक्षात आने पर उनके लिए जय जिनेन्द्र बोल सकते हैं। जय जिनेन्द्र बोलने हेतु किसी का स्टेच्यू बना करके रखा जाए, ये क्या जैन धर्म के अनुसार उचित है या अनुचित? अनुचित है। ऐसा फिर श्रावक का भी तो कर सकते हैं ना, श्रावक भी भगवान के ही भक्त होते हैं। और आज पंचम काल में तो श्रावक ही विशेष रूप से धर्म की सेवा, मंदिर की सेवा, भगवान की रक्षा की बात जहाँ तक श्रावक ही करते हैं। देव तो भगवान की रक्षा करने के लिए आते ही नहीं, आते थे, आते हैं, ऐसा है क्या? थे पहले, आते थे, आए थे, किया था, पर आते हैं क्या? नहीं। फिर आते नहीं हैं तो फिर उनसे हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं? मंदिर में बैठे भगवान की प्रतिमा का, मंदिर का क्या ये रक्षण कर सकते? आते हैं तो कर भी सकते हैं, आते ही नहीं हैं तो कर भी कैसे सकते? क्या स्टैचू रक्षण करेगा? नहीं करेगा। तो रक्षण ही नहीं कर सकते तो उनके लिए जय जिनेन्द्र भी क्यों बोले? साक्षात आए तो बोलने का विधान है ना, तो साक्षात आ जाए तो बोलो। पर पंचम काल में आते हैं ऐसा है क्या? कहीं भी ऑल इंडिया में इतने सारे मंदिर हैं, देव आते हैं और हमको आंखों से भी दिखते हैं, ऐसा एक भी कोई मंदिर है? ऐसा अगर हो जाए तो आप बोल देना। मंदिर में घंटी बज जाए, घंटी तो बज सकती है पर दिखना भी तो चाहिए ना, देव ही बजा रहे हैं ये हो सकता है पर हमको दिखना चाहिए ना, हमको जय जिनेन्द्र बोलना है उनको, तो दिखे तो है ना जय जिनेन्द्र बोलेंगे। और नहीं दिख रहे हैं, घंटी बज रही है तो क्या परोक्ष बोलोगे जय जिनेन्द्र? जो घंटी बज रहे देव लोग इधर ध्यान दो, मैं जय जिनेन्द्र कर रहा हूँ, ऐसा कहोगे? नहीं, उनके तरफ से भी जय जिनेन्द्र शब्द आपके लिए आएगा। आप यदि जय जिनेन्द्र बोलेंगे तो देव भी जय जिनेन्द्र बोलेगा, आप नहीं बोलेंगे तो वो भी नहीं बोलेंगे। हाँ ये हो सकता है आप आए और आपसे मिलना था, कुछ करना था, तो आपको देखते ही वो पहले जय जिनेन्द्र बोल देते हैं, देव आपको ही पहले जय जिनेन्द्र बोलते हैं, आपको पता था ये? नहीं था, पता था? एक देव और एक मनुष्य आमने सामने हो जाए, जय जिनेन्द्र अभिवादन शब्द का प्रयोग पहले देव लोग करते हैं कि मनुष्य करते हैं? देव करते हैं। देव को करना चाहिए कि मनुष्य को करना चाहिए? देखो दोनों उत्तर आ रहे हैं, दोनों उत्तर आ रहे हैं, देव को करना चाहिए क्योंकि उनके पास संयम नहीं है, उनके पास सील नहीं है। संयम और सील ये दो देवों में नहीं होते, इसलिए देव मनुष्य का संपर्क करते हैं, मनुष्यों का संपर्क करते हैं। काय के लिए? मनुष्य महान हैं, मनुष्य संयमी बन सकता है, शीलवान बन सकता है, व्रती बन सकता है, सम्यक दृष्टि तो दोनों बन सकते हैं, देव भी बनता है, श्रावक भी बनते हैं, पर व्रती बनना, शीलवान बनना, संयमी बनना एक विशेष बात होती है। उससे वजनदारी आती है आत्मा में, उसमें पूज्यता आती है, उससे पूज्यता आती है। देव यदि किसी मुनि के पास पहुंच जाए तो मुनि की भक्ति करेंगे कि नहीं, पूजा करेंगे कि नहीं, अर्घ्य चढ़ाएंगे कि नहीं, क्या बोलेंगे, पीछे कमंडलु धारी कहेंगे क्या, रत्नत्रय के धारी कहेंगे? आप समझ गए, आप लोग पहले समझ नहीं पाते थे, हमारी दृष्टि घड़ी पर नहीं गई थी, आपकी भी नहीं गई थी, पुस्तक बंद करना है। हाँ, देखो नमस्कार मंत्र दिया, पर पंच नमस्कार मंत्र नहीं दिया, नमस्कार मंत्र दिया। तो नमस्कार मंत्र पांच प्रकार का है, कौन सा नमस्कार, ये भी नमस्कार मंत्र, ये भी पांच परमिष्टियों के पांच पद नमस्कार मंत्र ही कहलाते हैं। पांच मंत्र हैं एक मंत्र में, नमस्कार मंत्र पांच हैं और तीन पांचों मिल करके पंच परमिष्टि नमोकार मंत्र ऐसा नाम आया है। तो उन्होंने इसमें से किसको दिया था, सोचो, नमो सिद्धानम, नमः सिद्धेभ्यः, इतना ही कहा था। पूरा नमोकार मंत्र सुनाया ऐसा समझ रहे? नहीं नहीं, नमस्कार मंत्र सुनाया तो पंच परमेष्टि नमस्कार मंत्र नहीं सुनाया था, उन्होंने केवल सिद्ध पद का उच्चारण सुनाया था। उच्चारण करते ही नहीं है, नमस्कार नहीं करते हैं साक्षात आने पर भी, फिर उच्चारण कैसे सुनाएंगे? नहीं, नहीं सुनाते, नमस्कार मंत्र सुनाया। यही आता है आगम में, पार्श्वनाथ तीर्थंकर का चरित्र पढ़ो तो उसमें समझ में आएगा, मिल जाएगा। चिन्वानी, प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।